ऊंच के ऊंच कौन है? मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंच के ऊंच हैं। तो सच्चा कौन और झूठा कौन? कौन सच्चा बोल रहा है और कौन झूठा बोल रहा है? जो बाबा सच्चा बोल रहा है और हम बच्चे जो कहते हैं ऊंच तो ऊंच भगवान से झूठ बोल रहे हैं, दो बातें कैसे सच हो जाएंगी? ऊंच से ऊंच ये तो कंट्रास्ट हो गया ना, क्या ये तो भेंट हुई ना, ऊंच से ऊंच भगवान। तो ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहाँ होते हैं? साकार सृष्टि की बात है ना, और जो ऊंच से ऊंच होगा तो नीच से नीच भी होगा। तो ये ऊंच से ऊंच और नीच से नीच किसके लिए कहा जाता है? सदाशिव के लिए कहा जाता है क्या? सदाशिव के लिए तो ऊंच और नीच शब्द होगा ही नहीं, किसके लिए होगा? जो नेक्स्ट शिव है, जो विश्व का मालिक बनता है, सीढ़ी के चित्र में जो अंत में अंतिम जन्म में बैगर दिखाया गया है, तुम बच्चे फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनते हो। बैगर की क्या बिसात, सड़क के किनारे पड़ा रहता है, लोग निकलते चले जाते हैं, कोई देखता भी नहीं। तो वो आत्मा संयुग के अंत में गीत गाने लगती है 500 साल पहले से। कौन सी आत्मा? जो अंतिम जन्म में आकर के फुल बैगर बनती है 100%, क्या गीत गाती है? तुलसी गरीब निबाज की कोई न पूछे बात, क्या गाती है? ये किसने कहा? तुलसीदास की आत्मा ने कहा कि फुल बैगर बनने वाली आत्मा ने कहा? तुलसीदास ने नहीं कहा। हाँ, मुरली में बोला है कि अपनी अपनी कथा कहानियां बैठ अपने अपने शास्त्रों में लिखी। माना सूरदास ने सूर सागर लिखा, उसमें कृष्ण की महिमा दर्ज दी। वाल्मीकि ने राम की महिमा कर दी, तो अपनी महिमा कर दी। फिर वही आत्मा कलयुग में तुलसीदास बनती है, तो कुछ भिन्न तरीके से। तो ये महिमा हुई क्या कि तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात? ये कोई महिमा हुई क्या? ये ज्ञानी है कि महिमा है? ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, इसमें भी कोई खास राज छुपा हुआ है। जैसे सदाशिव जो कभी ऊंचा ऊंच नीच नहीं बनता है, वो भी सृष्टि पर आता है तो रोज बच्चों से कहता है बच्चे मुझे याद करो, और सब दुख देने वाले हैं मेरी बात सुनो। और बच्चे क्या करते हैं? रोज रोज कहता है और रोज
नहीं सुनते।
तो तुलसी गरीब निवाज हुआ, शिव बाबा गरीब निवाज हुआ। तुलसी से ज्यादा तो गरीब शिव बाबा हो गया, जिसकी कोई बात सुनता ही नहीं, जबकि रोज कहता रहता। उन्होंने तो एक बार रामायण में लिख दिया। तो भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ऊंचे भगवान, और मैं क्या कहता हूं कि मेरे बच्चे ऊंचे ऊंचे होते हैं, सिद्ध करके बतलाते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। काहे का, किस बात का पुरुषार्थ? फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने का पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल पहले मौके बाप समझाते रहते, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, बल्कि कितने भी मर्तबे वाले हों, जो भी मनुष्य मात्र हैं, ड्रामा में सबसे ऊंच कौन है? ड्रामा में सबसे ऊंच किसका पार्ट है? प्रजापिता क्या सन्यासी है? सन्यासियों का सबसे ऊंच मान होना चाहिए। सन्यासियों का तो कोई मंदिर नहीं बनाते, कहीं पूजा नहीं करते। अगर उनका सबसे जास्ती ऊंच मान होता तो उनके भी मंदिर बनते, उनकी भी पूजा होती। तो अकेले प्रजापिता का गए नहीं क्या? सबसे ऊंचे गायन किसका है? महिमा किसकी है? कौन? हाँ, जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनकी है ऊंचे ऊंचे महिमा। ये लक्ष्मी नारायण भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हों, भले अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हों, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई हो नहीं सकते। सबकी बुराई करने वाले मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई बुराई नहीं। शास्त्र में कहीं भी लक्ष्मी नारायण का कोई भी बुराई करने वाला नहीं होगा। महिमा ही महिमा है, क्योंकि सतयुग आदि के सतयुग आदि में ऐसा इन्होंने, इनको किसने बनाया? ऊंच के ऊंच बाप ने बनाया। उसके मुकाबले और जितने भी बाप हैं, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, प्रजापिता ही क्यों न हो, सब नीचे साबित होते हैं। वो तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। कहां? उसको कहा जाता है सुखधाम। अमेरिका में जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? व्हाइट हाउस, नाम रखा है व्हाइट हाउस। और कर्म कैसे होते हैं, ऐसम बम बनाने के, दुनिया को ध्वस्त करने के, नाम रखा है व्हाइट हाउस, कहां बनाते हैं, अमेरिका के कौन से शहर में है, वाशिंगटन में, न्यू यॉर्क, या तो मन बैल कहो, रथ कहो, गाड़ी कहो, नई गाड़ी में जो नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में नई गाड़ी कौन सी, पुरानी गाड़ी कौन सी, नया बैल कौन सा और पुराना बैल कौन सा, हाँ पुरानी गाड़ी ब्रह्म, वो ज्यादा ओल्ड हो गया, सुनो भाई, नया बैल ब्रह्म, पुराना बैल नया कौन और पुराना कौन, हाँ नया होगा तो बाद में बनेगा और पुराना होगा तो पहले बनेगा। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में न्यूयॉर्क कौन सा हुआ है? अरे और ओल्ड यॉर्क कौन हुआ, ये दो बैलों की जोड़ी है, न्यूयॉर्क ब्रह्मा और पुराना यॉर्क प्रजापिता। तो व्हाइट हाउस कहां बनाते हैं, है? न्यूयॉर्क में व्हाइट हाउस बनाते हैं, कपड़े भी सफेद पहनाए के बैठाए गए, फॉलोअर्स भी सब सफेद घोड़ा भक्त, क्या रंगीन कपड़े कोई नहीं पहनेगा, बाहर से बिल्कुल सफेद होंगे, अंदर से कितनी भी रंगीनियां भरी हुई हो लेकिन बाहर से, बाहर से व्हाइट हाउस। तो वो तो व्हाइट हाउस बनाते हैं परंतु बाहर तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनता है, कहां, न्यूयॉर्क में या ओल्ड यॉर्क में, ओल्ड यॉर्क में रतन जड़ित बनते हैं, गोल्डन हाउस बनते हैं, उसको कहा जाता है सुख धाम। कौन सा धाम, सुख का धाम, तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, उनका हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं है, किसका, ओल्ड यॉर्क का, न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क वालों का हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं है, क्यों, अरे ब्रह्मा 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, हा? बनेंगे ना, बनेंगे, बने नहीं, भविष्य में तो बनेंगे, हाँ बनेंगे तो, लेकिन शरीर छोड़ करके बने, तो हीरो हीरोइन तो उनको कहा जाएगा जो आदि से लेकर के अंत तक ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, तो तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, ये नहीं कहा इनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, इनका, इनका, तुम डायमंड बनते हो और यह गोल्डन एज थी, अब तो है आयरन एज, किसकी, इनकी और तुम्हारी, है? अब तो सबकी आयरन एज है, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए है? खुश रहना चाहिए या रोना चाहिए है? खुश रहना चाहिए न कि गीत गाना चाहिए रोने पीटने के। कौन से गीत? रहमन गरीब निवाज की कोई न पूछे, कोई न पूछेगा। बाप कहते हैं तुमको कितना खुश रहना चाहिए, तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इतना अमूल्य जीवन और किसी का हो नहीं सकता। कौन सा, कौन सा? संगम युग में जो फुल बैगर का पार्ट है वो तुम्हारा जीवन कितना अमूल्य है। सचिव के किसी जन्म का अमूल्य है या ये वर्तमान, वर्तमान जन्म अमूल्य है? संगम पर अमूल्य है, संगम पर हीरे जैसा बन गया है, कोहिनूर हीरा बन गया है? नहीं बना, बन तो गया लेकिन विदेशों के हाथ में चला गया। क्या कोहिनूर हीरा बन तो गया अमूल्य जीवन, लेकिन किसकी मुट्ठी में है? विदेशों की मुट्ठी में है। माना रावण राज्य में है कि राम राज्य में है? रावण राज्य में है। बहुत अमूल्य जीवन है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते। चलो हीरा चाहे धूल मिट्टी में क्यों न पड़ा हुआ हो, उसकी कोई कीमत करे या न करे, कोई बात पूछे या न पूछे, लेकिन हीरा तो हीरा, हीरा तो हीरा ही है। किसी भी मुट्ठी में हो, अरे मुझे हीरे का बाप ही कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। क्या जो रचयिता है उसको बनाने वाला वो ही कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तो और कौन रह जाएगा है? पतित दुनिया में आता हूँ, पतित देश में आता हूँ, पतितों के बीच में आता हूँ, गंदे से गंदे गांव में आता हूँ। क्या गंदे से गंदे गांव? भगवान कहते हैं, भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। अमूल्य जीवन है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। अमूल्य जीवन क्यों, क्यों बनता है अमूल्य जीवन? क्योंकि तुम कोई एक की सर्विस नहीं करते हो, सिर्फ महिमा करने वालों की सर्विस नहीं करते हो। महिमा करने वाले देवताओं की सर्विस करना वो तो सहज है, लेकिन लेकिन कांटों की सर्विस करना जो दुख देने वाले हैं वो कठिन है। ऐसे नहीं कि न्यूयॉर्क ने कांटों की सर्विस नहीं की, माना? ब्रह्मांड बाबा ने क्या कांटों की सर्विस नहीं की क्या? की तो, लेकिन तरीका पूरा नहीं निकला, बुद्धि में नहीं आया, और आया भी तो बुद्धि में थोड़े समय के लिए बात आई फिर उड़ गई, क्योंकि मां में मोह होता है बच्चों के प्रति। कोई भी विकार हो, विकार के वशीभूतों पर जो काम किया जाएगा उसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो विश्व की सेवाधारी नहीं बन सके, क्यों? क्योंकि जो देव आत्माएं थी वो तो सुधरी, लेकिन जो आसुरी आत्माएं हैं, दुखदायी कांटे हैं, वो उस प्यार के अंजाम में और ही ज्यादा बिगड़ गए, तो उनकी सर्विस नहीं हुई और ही क्या हो गई, डिस सर्विस हो गई। उनकी इतनी डिस सर्विस हो गई कि उन्होंने अपने सुधारने वाले को ही हार्ट फेल कर दिया, उसी के बुद्ध रूपी पांव में कांटा लगा दिया। गांधी जी ने चाहा राम राज्य हो, सब राम राज्य के भाती बने, और ही क्या बन गया, और ही रावण राज्य बन गया। तो अमूल्य तुम्हारा जीवन है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो, सिर्फ देवताओं की ही सर्विस नहीं करते हो, देवात्माओं की ही नहीं करते हो जो सुख देने वाले हैं, लेकिन असुरों की भी सर्विस करते हो। विष्णु देवता के लिए कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ देवताओं को ही वरदान दिए, उन्हीं को प्राप्ति कराई, लेकिन कोई ऐसा भी देवता है जिसने असुरों को भी प्राप्ति कराई तो देवताओं को भी प्राप्ति कराई, वो कौन सा देवता है? शंकर के लिए गए तो देवता और असुर उसमें सारा विश्व आ जाता है, विश्व में सब कोई होंगे, ऐसे नहीं। जो अपने को प्यार करते हैं उनकी हम सेवा में लग जाएं, और जो अपने मुंह पर थूकते हैं उनको कहें भाई हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप तो शंकर, तो विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे। विश्व कल्याणकारी का मतलब विश्व की कोई भी ऐसी आत्मा न हो जिसकी सेवा करने से हम कतराएं, दूर भागे। तो तुम्हारा जीवन अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व सेवाधारी हो, पाप को बुलाते ही है कि आकर के हेल को हेवन बनाओ, देवात्माओं को देवात्मा बनाया, तो क्या बड़ी बात हुई? हेल को हेवन बनाना कोई बड़ी बात, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब तो तुम हेल में हो। हेल में क्या होता है? हेल में कोई भी बीज हो तो बीज की क्या हालत होगी जब हेल में डाल दिया जाए, बाढ़ में है? तो जलेगा, भुनेगा, काला कलूटा बैंगन लूटा हो जाएगा। जैसे रावण के लिए क्या कहते हैं, रावण हेल में था या हेवन में था? हेवन में था। तो कहाँ पड़ा हुआ था? हेल में ना? हेल में भुनेगा, जलेगा या नहीं जलेगा? तो रावण को जलाया गया ना? तो तुम अभी हेल में हो। सारी दुनिया हेल में, शिव बाबा भी हेल में है, फिर हेवन में होंगे। शिव बाबा हेल में नहीं होंगे, वो हेवन में नहीं होंगे, लेकिन तुम बच्चे हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाते हैं। ये भी बात अजी क्या, जब हेल शुरू होता है तो हेवन की बातें भूल जाते हैं। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। क्या ऐसे नहीं समझना, सतो प्रधान स्टेज ही बनी रहेगी। अब तो हमें बाप मिल गया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखो। तो अब तो हम डायरेक्ट बाप से सीखने लगे, अब तो हमारी आत्मा की सुई की कट सारी उतर गई, अब तो हम बस जो होना था पाना था तो पा लिया, अब ऊपर नीचे कभी नहीं होंगे। फिर भी क्या होगा, तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। क्यों आना है भाई है? चक्की चल रही है, पूरे पिसे नहीं है अभी, पूरा देह अभिमान अभी पिसा नहीं, टूटा नहीं है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो, जिससे खुशी नहीं रहती हो तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आकर के रहते हो, खुशी होनी तो चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो क्या? मैं किसको आकर के पढ़ाता हूं? अंधों को क्या? अंधों को पढ़ाता हूं कि संधों को पढ़ाता हूं? देह अभिमान किसमें होता है? संधों में देह अभिमान होता है। तो मैं रहता कहां हूं, किसके बीच है? किसके बीच रहता हूं? अंडों के बीच। अंडा माना आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति, जिनकी बीज रूप स्थिति है उनको पढ़ाता हूं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देह अभिमानी बच्चों से तो बात भी नहीं करता। अगर बात करता भी है तो समझो वही देह अभिमानियों का बाप ही बात करता होगा। क्या था? बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। धन बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, प्रलय नहीं होती। बाप कहते हैं मैं میں صرف پرانی کو نیا بناتا ہوں، پرانی دنیا وناش کراتا ہوں۔ کیا جو پرانے ہیں ان کا وناش کراتا ہوں، اور نئی دنیا استھاپن کراتا ہوں، من سیمپلنگ لگاتا ہوں، ایسے نہیں کہ ٹوٹل سب خلاص کر دیتا ہوں۔ تو وناش کس کے دوارا کراتا ہوں اور کس کا کراتا ہوں؟ آسری دنیا کا وناش کراتا ہوں، کانٹوں کے جنگل میں آگ لگواتا ہوں۔ جو سانڈے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، جیسے شیو باپ کی مذاق اڑاتے ہوں، تو ان کو کیا کرتا ہوں؟ جلائے دیتا۔ اور پھر کون بچتا؟ کون ہے؟ روحانی باپ روحانی بچوں کو بیٹھ سمجھاتے ہیں۔ تو جو انڈے ہیں، آتم کی چھٹی میں رہنے والی آتمائیں ہیں، ان کے دوارا نئی دنیا بناتا ہوں، اور باقی سب باقی کو سب کو خلاص کر دیتا ہوں۔ ایسی شوٹنگ کتنی بار ہوتی ہے؟ بار بار ہوتی ہے، کم سے کم چار بار۔ تم کو نئی دنیا کا مالک بناتا ہوں، میں کچھ کرتا نہیں ہوں، یہ بھی ڈرامہ میں نود ہے۔ پتت دنیا میں ہی مجھے بلاتے ہیں، پارک ناتھ بناتا ہوں۔ تو بچے خود پارس پوری میں آ جاتے ہیں، پارس میں کیا وشیشتا ہوتی ہے اور پتھر میں کیا وشیشتا ہوتی ہے؟ پارس جس کو ٹچ کرے گا تو لوہے کو بھی سونا بناتا ہے، ایسا کوئی پتھر ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ صرف گائن ہے۔ کس سمے کا؟ اس سنگم یوگ کا گائن ہے کہ پرماتما باپ پتھر بدھی کو پارس بدھی بنا۔
یونٹ نمبر کے رجسٹر میں 41 پیج پر 2790 کا پرات کلاس، پہلے پیج کا مدھیان بلاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ میں نود ہے، پاون دنیا میں مجھے نہیں بلاتے ہیں۔ مانے جو پاون ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں بلاتے ہیں، کون بلاتے ہیں؟ پتی ہی مجھے بلاتے ہیں، اور پتوں کو آ کر کے پتھر بدھیوں کو آ کر کے پارس ناتھ بناتا ہوں۔ تو بچے خود پارس پوری میں آ جاتے ہیں، جن کو پارس ناتھ بناتا ہوں یا پارس بدھی بناتا ہوں وہ خود پارس پوری میں آ جاتے ہیں۔ خود آ جاتے ہیں یا دھکا پریت سے آ جاتے ہیں؟ ایک گاڑی ہوتی ہے دھکے سے چلنے والی، اور ایک آٹومیٹک اسٹارٹ ہوتی ہے۔ کوئی ہوتے ہیں پشکرنی برہمن، اور کوئی ہوتے ہیں سرسوتی پتر سارسوت برہمن۔ شریشٹ کون سے ہوتے ہیں؟ سارسوت۔ کیوں؟ کیونکہ بدھی کی دیوی سرسوتی مانی جاتی، وہ سرسوتی پتر ہے، جانی تو آتما، جان کے آدھار پر آکرشت ہونے والی آتما ہے۔ और पुष्करणी कौन से होते हैं? पुष माने धक्का, जो दूसरों के धक्का लगाने से चल पड़े। तो जो गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है उस गाड़ी में, और जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने वाली होती है उस गाड़ी में फर्क क्या होगा? सहज किस में भासेगा और मुश्किल किस में भासेगा? जो ऑटोमेटिक होगी उसमें सहज भासेगा। तो जो ऑटोमेटिक रूहानी बच्चे ओरिजिन में ही रूह थे, रूहानी स्टेज में रहने वाले रूहानी बाप के रूहानी बच्चे जिन्हें बाप बैठ पढ़ाते हैं वो खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। उनको बाप को धक्का दे करके पारसपुरी में भेजने की दरकार नहीं पड़ती, माना सजाएं नहीं खाते। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहां मुझे कभी बुलाते नहीं है। कहां आ तो जाते हैं पारसपुरी में, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाते। अभी तुम कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट ले लो? बुलाते ही नहीं। बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं, नूद कर लो, गैंग भी है। दुख में ऐसे निरण सब करें, सुख में करें को इस दुनिया में ही, दुख की दुनिया में ही सिमरण करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो बाप कहते हैं सुख के दिनों में धीरज धरो। कब धीरज धरो? सुख के दिनों में धीरज धरो। अभी वो टाइम नहीं आया है कि जहां चारों तरफ मौत ही मौत मंडराए रही है। अभी तो बहुत सहज समय चल रहा है। तो सुख की दुनिया में मुझे कभी नहीं बुलाते। बुलाते कब हैं? बड़े स्वार्थी बच्चे हैं। जब दुख शुरू होते हैं, दुखों के पहाड़ गिरते हैं, तब बुलाते हैं। तो बाबा कंप्लेंट करते हैं, मुझे कभी बुलाते हो नई दुनिया में? हैं? सुख की दुनिया में तुम बुलाते हो? चेहरा देखा है? सुख की दुनिया में ये बुलाते हैं, ऐसे हम बुलाते हैं तो भी नहीं आते। 33 करोड़ देवताओं में से एक ये है शांता कुमारी, कहते हम सुख की दुनिया में भी बुलाते हैं बड़े आराम से। इस दुख की दुनिया में हम अच्छी खासी नौकरी करते हैं, आराम से रहते हैं, फिर हम बुलाते हैं तो आप आते हैं। हमारे बुलाने से आप आते हैं, हम बुलाते हैं लेकिन आप नहीं आते हो। बुलाते तो हम हैं, आप नहीं आते हो, ऐसी बात है। यहाँ तो सुख की दुनिया की बात हो रही है कि जब सुख की दुनिया में होते हैं तो तुम मेरे को नहीं बुलाते हो। बुलाते कहाँ हो? दुख की दुनिया में बुलाते हो। मालूम है देवताओं, सुख की दुनिया में पता है। अरे सुख में रहने वाले तो अभी भी नहीं पहचान पाते हैं, धक्का दे के निकाल के बाहर कर देते हैं। हटो, कहां से ये बैगड़ आ गया? वो नहीं पहचान पाते कौन, बड़े बड़े सुख में रहने वाले सेठ साहूकार, वो अपने ही सुख में मस्त रहते हैं, वो भगवान को क्या पहचाने? वहां मुझे कभी बुलाते नहीं हो। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ा विजिट ले लो, तो गायन है सुख में करे न कोई याद, न याद करते हैं और न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बना करके उसमें मुझे रख देते, क्या करते हैं? द्वापर में मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में मुझे रख देते हैं, हाँ मुझे रख देते हैं। किसे रख देते हैं? मुझे। ये किसने कहा? शिव को रख देते हैं। द्वापर में आदि में सिर्फ हीरे को रखते हैं। हीरा वाला शिवलिंग कहाँ रखा जाता है? सिर्फ सोमनाथ के मंदिर, बाकी तो फिर वो इसकी प्रतिमा ही रखी जाती, वो लिंग ही रखा जाता है, हीरे को भी भूल जाते। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं। पत्थर का लिंग और हीरे का लिंग, स्वर्ण लिंग भी होता है, रजत लिंग भी होता है, ताम्रलिंग भी होता है, तो मुझे बना करके रख देते हैं पूजा करने के लिए। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पूजा बड़ी चीज की होगी या छोटी चीज की? बिंदु तो सूक्ष्म, और तो जल चढ़ाने से ही लुढ़क जाएगा, तो बड़ा रूप रखते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़ा रूप किस लिए बनाते हैं? पूजा करने के लिए। याद करने के लिए क्या होता है? बिंदु को याद किया जा सकता है, आत्मा को याद किया जाता है सिर्फ, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी उसकी पूजा होती है। अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लेना चाहिए क्या, कि भक्ति मार्ग में तो मेरे जड़ रूप की, बड़े रूप की पूजा करते हैं, और जब मैं चैतन्य में आता हूं तो बड़े रूप की बात भी नहीं सुनते क्या? कितना अंतर हो गया, वंडरफुल बात हो गई कि नहीं? जब मैं द्वापर में आता ही नहीं हूं, सत्युग त्रेता में आता नहीं, तब मेरे को बुलाते नहीं, तब तो कोई बात नहीं। जब दुखी होते हो और जब बुलाते हो तब भी तुम्हारा क्या हाल होता है? कि मैं जिस रूप में आता हूं लिंग में, उस लिंग की पूजा करते हो, बड़ा मान मर्तबा देते हो, बड़ा महल बनाते हो, ऊंची महल माड़ियों अटारियों वाला। सोमनाथ मंदिर कितना भव्य बनाया, कितनी धन संपत्ति मिलती है तो उसने इकट्ठी की, और जब मैं उसमें आता हूं उसके चैतन्य रूप में, तब क्या करते हो? तब क्या हाल करते हो? तो अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लेना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए क्या? प्योर कान और इम्प्योर कान कैसे होते हैं? बोलो भाई। अरे कान ही प्योर करना चाहिए क्या? और भी इंद्रियां, और ही इंद्रियां प्योर करनी चाहिए। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दो तो क्या कहा जाएगा? कान प्योर है कि इम्प्योर है? तो कान इम्प्योर हो गए, तो कानों को भी तो प्योर बनाना चाहिए कि दूसरी दूसरी इंद्रियों को ही प्योर बनाना है? बाप आते हैं, साकार तन लेते हैं, तो दृष्टि तो बड़े प्यार से लेंगे बैठ करके, हमारी दृष्टि सुधर जाए तो, और इंद्रियों की तरफ तो बहुत ध्यान देंगे, लेकिन कान भी तो सोने के बनाने चाहिए। प्योरिटी इज फर्स्ट, कान पत्थर के कब बनते हैं? जब एक की बात न सुन करके औरों की भी बात सुनते हैं तो कान पत्थर के पत्थर ही रह जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों में विचार जो होता है, ज्ञान भी विचारी और विचारी होता है। तो कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। क्या सोने का बर्तन माना? सच्ची इंद्रियों वाला शरीर जिसमें ये धारणा पक्की हो कि एक बाप सच्चा और बाकी सब दुनिया में झूठे। लेकिन क्या बना देते हैं? बाप को झूठा बन साबित कर देते हैं और दूसरों को सच्चा साबित कर देते हैं। तो कानों में भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। कानों में अगर विचार घुस जाएगा, जैसे और इंद्रियां भी विचारी बनती है, एक से आंख लड़ाई जाए और अनेकों से आंख लड़ाई जाए तो आंख कैसी बनेगी? विचारी बनेगी। तो ऐसे ही कान भी एक से बात सुनी जाए ध्यान देकर और दूसरों से भी बात सुनी जाए ध्यान देकर तो क्या होंगे? कान कान विचारी होंगे, विचारी ज्ञान सुना। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह कान खोलकर सुन लेना चाहिए। कानों में भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो, ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है, कल पहले जैसे विनाश हुआ है हूबहू अब भी होगा। क्या कल पहले माना? बहुत दूर जाने की बात नहीं है, तो 5000 वर्ष पीछे चले जाओ। हाँ, सची की शूटिंग में या त्रेतायु की शूटिंग में जैसे कलप पहले देह अभिमानी सांडों का विनाश हुआ है, वैसे अब भी विनाश होगा, हूबहू होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं। क्या बनाने? किसको? देह अभिमानी सांडों को या तुम बच्चों को? महल माना जैसे कल पहले बनाए थे वैसे ही बना देंगे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। पुराण कहाँ की यादगार? कोई भी शास्त्र संगम युग की ही यादगार है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। किसमें? मानसरोवर। ज्ञान सागर भी कहते हैं और ज्ञान मान सरोवर भी। सरोवर माना टैंक तालाब बड़ा। कहते हैं उसमें हंसों का निवास होता है। कहाँ है मान सरोवर? कहाँ बना हुआ है मान सरोवर? झील अमृतसर में है। वहां तो सिर्फ यादगार बनाया हुआ है, छोटा सा तालाब। वास्तव में मानसरोवर झील कहाँ है? हिमालय पर्वत पर। ऊंचाई में। तो उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। क्या करे? टुबका मन डूब जाए। उसके प्यार में अगर कोई डूब जाए, उसे स्नेह जल में अगर कोई डूब जाए तो क्या बन जाए? परी बन जाए। परी मन हाँ, ज्ञान योग के पंखों वाली परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञानमान सरोवर, कोई पानी का सरोवर नहीं है। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो? शोभनी को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है जो आंखों से देखने में सुंदर लगे। कैसी शोभनी? हाँ, क्योंकि सौंदर्य भी दो तरह का होता है। एक बाहर का देखने का सौंदर्य और दूसरा अंदरूनी सौंदर्य। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर दूसरा भी पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। तो महावीर का मतलब उन्होंने समझ लिया कोई बहुत बड़े होंगे, लंबे चौड़े होंगे। तो ये बड़े बड़े चित्र की तो बात की यादगार है। हाँ, उनकी बुद्धि विशाल थी। गुफाओं में पांडवों के चित्र दिखाए। गुफा का मतलब क्या हुआ? गुप्त पुरुषार्थी थे, जिस गुप्त पुरुषार्थ को कोई दूसरा नहीं देख सका। बाहर का चिकना चुपड़ा चेहरा तो सब देख लेते हैं, उससे कोई पुरुषार्थ ऊंचा नहीं हो जाता है। पुरुषार्थ ऊंचा कब देखा जाएगा? जब अंदरूनी दिव्य गुण और अंदरूनी शक्तियां सामने दिखाई पड़े। तो पांडवों के बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठे दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, पहाड़ों को काट काट करके गुफाएं बनाते हैं, जड़ चित्र बनाते हैं, जड़ गुफाएं बना दी है, कितना पैसा खर्च किया है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहां किए? भारत कितना साहूकार था, अभी देखो भारत का क्या हाल हो गया है। जो 100% साल्वेंट था, अब अभी 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। सॉल्वेंट मन भरपूर, जो 100% भरपूर था वो अब 100% खाली हो गया है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए, कहे कि भारत को भरपूर करने की। बच्चों आदि को यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो या शंकर बाबा को याद करो? बाबा तो होता भी नहीं, हो शंकर ताऊ कहा है। किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। शिव को याद करो या शिव को याद करो? शिव बाबा को। ये कैसे पहचान में आए कि शिव बाबा को याद करते हैं कि सबको याद करते हैं? दोनों याद आते हैं, दोनों याद आते हैं। दोनों के याद आने में फायदा है या एक की याद आने में फायदा है? दोनों याद आएंगे। आत्मा कौन सी याद आएगी, गुण किसके याद आएंगे? शिव बाबा की ना। एक है तमो प्रधान आत्मा वाला शरीर और उसी शरीर में सतो प्रधान आत्मा शिव बाबा की प्रवेश है। तो शिव बाबा की सोल याद आएगी तो गुण उसके याद आएंगे ना, और तमो प्रधान आत्मा याद आएगी तो उसके ऐसे कलयुग की दुनिया के गुण याद आएंगे। क्योंकि राम ही अंतिम जन्म में क्या बनता है? रावण बनता है। वो राक्षसों का भी बाप है तो देवताओं का भी बाप है, सारी दुनिया का बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरे से बुरा है। नाम ही है श्याम सुंदर, ऐसा श्याम भयंकर और ऐसा सुंदर और किसी धर्म में नहीं होता। क्या अच्छे से अच्छा खुशनुमा प्रसन्न करने वाला पार्ट वही भी बजाने वाला है और भयंकर से भयंकर पार्ट भी बजाने वाला है। तो कहते हैं शिव बाबा को याद करो, है तो एक ही पर्सनालिटी लेकिन पार्ट उसमें दो प्रकार के भरे हुए तो भी नहीं, तीन प्रकार के। तुम कृष्ण जैसे बनेंगे ना, तुमको बनना कैसा है? सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है या मास्टर शंकर बनना है? क्या बनना है? क्योंकि शोभावा के गुणों में और कृष्ण के गुणों में बहुत अंतर है। शोभावा का ये गाय नहीं है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। शोभावा अगर सर्वगुण संपन्न पार्ट बजाने लगे तो ये जो गुणहीन है इनको सुधारेगा कौन? जो प्यार से नहीं सुधर सके वो अगर संपूर्ण हिंसक बन जाए मनसा से वाचा से और कर्मणा से, तो ये जो सारी दुनिया की हिंसा करने वाले एटम बम ग्लानी के बनाए हुए पड़े हैं, मुंह पर भी ग्लानी करते हैं और पीछे से भी ग्लानी करते हैं, परमात्मा की भी ग्लानी करने से नहीं चूकते, बाज नहीं आते, उनको कौन सुधारेगा? अहिंसक पार्ट बजाने वाला सुधारेगा? ये परमात्मा की महिमा नहीं है। कौन सी? सर्वगुण संपन्न, ये तो तुमको बनना है। तो तुम कृष्ण जैसे बनेंगे ना कि शंकर जैसे बनेंगे? डायरेक्शन क्या दिया है अव्यक्तवाणी में, मुरली में भी? तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो बाप का पार्ट है, बाप की पर्सनालिटी है। बाप को तो हर तरह का पार्ट बजाना पड़ता है क्योंकि किसी न किसी तरीके से बच्चों को सुधार करके वापस ले ही जाना है। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़ी है? आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से कृष्ण बन, आगे जन्म में बन, सतयुग के जन्म में। आगे जन्म का मतलब पिछले जन्म में, तो उसका पिछला जन्म कौन सा हुआ? संगम में। कौन सा जन्म है? ब्रह्म जन्म। ब्राह्मण जन्म या फरिश्ताई जन्म है? कौन से जन्म में याद करने से वो ऐसा बना? कौन से सन में कहेंगे वो पुरुषार्थ किया? कौन से जन्म का पुरुषार्थ, कौन से समय का पुरुषार्थ जो ऐसा बना? शिव बाबा को याद करने से। शिव बाप नहीं कहा, शिव बाबा को याद करने से। ब्रह्मा के रूप में 69 तक ऐसा पुरुषार्थ किया जिसे ऐसा बना? 69 में तो एडवांस नॉलेज ही नहीं थी, एडवांस ज्ञान ही नहीं था। तो जब एडवांस ज्ञान ही नहीं है तो फिर ऊंचा पद कैसे पाएगा? एडवांस ज्ञान कब होता है? 71 से होता है। किसने कब बना, उसने पढ़ाई कब पढ़ी जो ऐसा बना 16 कला संपूर्ण 71 बना। 71 में कौन सा जन्म था? लास्ट जन्म या फर्स्ट जन्म? लास्ट जन्म ही चल रहा था ना। सूक्ष्म शरीर से भी कोई आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ सकती है। ये सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्मा मंडराए रही है, इनका कल्याण कैसे होगा? ये भी ब्राह्मणों में प्रवेश करके अपनी पढ़ाई पढ़ेंगी, तो ब्रह्मा की सोल भी पढ़ाई पढ़ती है। लेकिन बीज रूप के संघ में उनका बीज रूप स्टेज बनती है, तब पढ़ाई पढ़ती है। तो आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से कृष्ण बना, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा भी इस समय पढ़ रही है, हमारा साथी है पढ़ाई पढ़ने में। तो जब उसका है मापदंड क्या है, उसका यह मापदंड क्या है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। तो हमारा भी एम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हमारा भी एम ऑब्जेक्ट सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का होना चाहिए।
आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कष्ट बना, इसको याद करने से शिव बाबा को याद करने से ही कष्ट बना। वो कौन से शरीर से याद करता है?
आते हैं माना आने